नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापक ऊर्जा गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का ले किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमरीका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्यालय मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ मुलाकात की और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम करवाया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। श्रोता इसे सुनने के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर जुड़ सकते हैं। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। और IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।